দয়া করো মোরে শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য, শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দয়া করো মোরে। শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দয়া করো মোরে, পতিত পাবন হেতু সব অবতার, সম পতিত প্রভু না পাইবে আর, শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দয়া করে দয়া করো, শ্রী কৃষ্ণ প্রভু নিত্যানন্দ প্রেমানন্দ সুখী, Thank you. प्रभु श्रीनिवास राम चंद्र संग मगे नरोत्तम दास
జయ ఓం విష్ణుపాద పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య స్తోత్ర సదశ్రీ శ్రీమద్ అభయ చరణార్వింద భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాద మహారాజ్ కి సమవేత భక్త బృందకి నితాయ గౌర హరిప్రమానందే. ఓం నమో భగవతే శ్రీ చైతన్య చంద్రాయ, నమో భగవతే శ్రీ చైతన్య చంద్రాయ, ఓం నమో భగవతే శ్రీ చైతన్య చంద్రాయ. జయ జయ శ్రీ చైతన్య, జయ నిత్యానంద, ద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త వృంద, శ్రీ చైతన్య చరితామృత సే పాఠ మధ్య లీలా నవమ అధ్యాయ శ్లోక సంఖ్య 311. ధనుస్తీర్థ దేఖి కరిలా నిర్బింధ్యాతె స్నాన, ఋష్య ముఖ గిరి ఐలా దండకారణ్య, ధనుస్తీర్థ దేఖి కరిలా నిర్బింధ్యాతె స్నాన, ఋష్య ముఖ గిరి ఐలా దండకారణ్య, ధను తీర్థ దేఖి కైలా నిర్బింధ్యాతె స్నాన, ఋష్య ముఖ గిరి ఐలా దండకారణ్య, అభివృద్ధి కరంగి శబ్దార్థ ధను తీర్థ, ధను తీర్థ దేఖి దేఖ కర, కరిలా కియా, నిర్బింధ్యాతే నిర్బింధ్యా నామక నదీ మే, స్నానే స్నాన్ కియే, ఋష్యముఖ గిరి ఋష్యముఖ నామక పర్వత పర, ఆయిలా ఆయే, దండకారణ్యే దండక నామక అరణ్యమే. అనువాద్ ఏం తాత్పర్య శిల ప్రభాజిక ద్వారా అనువాద్. ఇస్కే బాద్ మహాప్రభు ధనుర్తీర్థమే పహంచే, జహాన్ పర్ ఉన్నోనే నిర్బింధ్యా నదీ మే స్నాన్ కియా, తత్పశ్చాత్ ఈ ఋష్యముఖ పర్వత పర్ పహంచే ఓర్ వహాన్ సే దండకారణ్య చలే గే. కుచ్ లోగో కా మత హే కి ఋష్యముఖ పర్వత శృంఖళా జిస్కి శురువాత్ బెలారి జిలే కే హంపి గ్రామ్ సే హోతా హే, యహ పర్వత శ్రేణీ తుంగభద్రా నదీ కే కినారే కినారే చల్తీ హే ఓర్ ధీరే ధీరే హైదరాబాద్ రాజ్య తక్ పహంచ్ జాతీ హే. అన్యో కే మత అనుసార్ యహ పర్వత మధ్య ప్రదేశ్ మే స్థిత హే ఓర్ ఆజకాల్ రాంప్ కహలాతా హే. दंडकारण्य विस्तृत भूभाग है जो खानदेश के ऊपर से प्रारंभ होकर नासिक तथा औरंगाबाद होते हुए दक्षिणी अहमदनगर तक फैला है। गोदावरी नदी इसी भूभाग से होकर बहती है और यहाँ पर एक विशाल जंगल है जिसमें भगवान रामचंद्र रहते थे। ओम अज्ञानं तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखानितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आपके सोमवार के प्रातःकालीन कक्षा भागवत के परिवर्तन में श्री चैतन्य चरित होता है, तो इसी परंपरा के अनुसार आज भी श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के नवम अध्याय के वर्णन चलता है। इसमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के दक्षिण भारत भ्रमण तीर्थ भ्रमण के वर्णन हुआ है। तो ये जो प्यार आज आप पढ़ रहे हैं उसमें ये उल्लेख है कि महाप्रभु धनुर्तीर्थ पहुँचे। ये एक्चुअली एक क्रम अनुसार वर्णन नहीं हुआ है, उसके पहले वर्णन आया था कि महाप्रभु पंडरपुर जा चुके हैं, पंडरपुर कृष्णबेन्ना महाराष्ट्र में पहुँच चुके हैं। और धनुर्तीर्थ कहाँ है? वो तो भाई साउथ में रामेश्वरम में है ना। नहीं अब वहाँ से तो आए फिर सीधा धनुर्तीर्थ स्नान, इससे लगता है कि धनुर्तीर्थ और भी कहीं होगा, पता नहीं। हम साधारण जाते हैं धनुषकोटि धनुर्तीर्थ ये है, लेकिन और कहीं धनुर्तीर्थ होगा शायद महाराष्ट्र के बॉर्डर में, क्योंकि अब तक नासिक फासिक पार कर चुके हैं, कृष्णबेन्ना बम्बई का आसपास पता नहीं कहाँ है। और उसके बाद तुरंत वर्णना करते हैं धनुर्तीर्थ स्नान करने के बाद में कहाँ है, ऋषिमुख पर्वत धनुर्तीर्थ में स्नान, धनुर्तीर्थ आकर के निर्विंध्या नदी में स्नान किए और उसके बाद में ऋषिमुख पर्वत। ऋषिमुख पर्वत सीधा कर्नाटक में है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का बॉर्डर है, बेलारी हम्पी डिस्ट्रिक्ट जहाँ किष्किंधा है वहीं है ऋषिमुख पर्वत, माल्यवंत पर्वत, वहीं सुग्रीव और हनुमान के साथ भगवान राम मिले थे। तो पाज में लिखते हैं तुंग भद्रा पर्वतमाला बेलारी डिस्ट्रिक्ट हुई है। तो वहाँ गए, तो वहाँ से ऋषिमुख पर्वत के बाद उन्होंने दंडकारण्य में, वो दंडकारण्य नागपुर आदि एरिया है, वो दो तीन स्टेट एमपी आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र कर्नाटक चार स्टेट मिल करके दंडकारण्य होता है, दंडकारण्य यहाँ फैला है बीच में। उसका बीच में एक जगह है नागपुर के पास जो रामटेक बोलते हैं, जहाँ अगस्त्य ऋषि का आश्रम था, भगवान राम वहीं जाकर कुछ दिन रुके थे अगस्त्य आश्रम में। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत भ्रमण क्या, दक्षिण भारत उद्धार, ये वर्णन प्राप्त होता है जब उन्होंने सार्वभौम को उद्धार करने के बाद दक्षिण जाने का मन में विचार किए, तो साथ में किसी को न लेकर अकेला जाना चाहे, तो उनके साथ में जो चार व्यक्ति गए थे, नित्यानंद जगदानंद, ये लोग सब बोले कि भाई हमको कैसे छोड़कर जाएंगे, हम सब छोड़कर आपके साथ आए, आप जहाँ जाएंगे हम वहीं जाएंगे। बोले नहीं नहीं, ये मेरे पर्सनल मैटर है, मेरे भाई से मिलना जा रहा हूँ, मुझे पता चला कि विश्वरूप वहीं है, आप जाकर क्या करेंगे, मैं तो मेरे भाई से मिलना जाऊँगा। लेकिन सबको पता था विश्वरूप के प्राप्ति हो चुका है, लेकिन फिर भी अब महाप्रभु लेना नहीं चाहते थे, क्या करें, कई कारण दे के उनको लिए नहीं। तो केवल एक ही व्यक्ति बड़े बोलने पर कृष्णदास कविराज को अपने असिस्टेंट रूप लेकर गए, और दक्षिण भारत भ्रमण करने का उद्देश्य उनका कोई तीर्थ दर्शन नहीं, दक्षिण भारत को उद्धार करना था। कैसे अद्भुत कृपा दक्षिण भारत में किए, ऐसा नवदीप अपने गांव में नहीं किए थे, ऐसे अद्भुत कृपा की। वो करते करते सारे अलग अलग बुद्धि वाले, बुद्धिस्ट, मायावादी और साइवाइट्स, अनेक लोगों को अलग अलग प्रकार से उद्धार करते करते, कोई कोई कट्टर राम भक्त थे उनको भी कृष्ण भक्त बना दिए। अब जैसे जैसे करके उद्धार करते करते पूरे दक्षिण करके, दक्षिण से मोड़ करके महाराष्ट्र के ओर आए, उड़पी भी गए थे, उड़पी से सीधा कर्नाटक का बॉर्डर है, वही महाराष्ट्र में आते हैं। महाराष्ट्र में आ कर के अब कृष्णवेण्णा, और वहाँ पर रंगपुरी से मिले थे, फिर कृष्णवेण्णा में आए, फिर नासिक में आए, इस प्रकार भ्रमण करते करते धनुर्तीर्थ में आए। अब ये धनुर्तीर्थ उसे लिखा नहीं गया कौन सा धनुर्तीर्थ, अभी तक तो सभी जानते धनुर्तीर्थ तो रामेश्वर के पास है, लेकिन ये बोलते धनुर्तीर्थ जा करके निर्विंध्या नदी में स्नान किए। अभी पता नहीं कौन सा धनुर्तीर्थ है, अभी तक उसका खोज नहीं किया गया पाया। तो निश्चित रूप से वो तो रामेश्वर का ओ वाला तमिलनाडु का ही धनुष्कोटी नहीं है, निश्चित रूप से ये धनुर्तीर्थ निश्चित रूप से कहीं महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर में कहीं होगा। तो उसके बाद में सीधा कर्नाटक बॉर्डर में, उसके पहले बोल दिए कि तापी नदी स्नान करते, नासिक से गुजरात बॉर्डर तक आए, महेश्वर दर्शन किए, तापी स्नान किए। इससे पता चलता है कि महाप्रभु दक्षिण भारत भ्रमण ने महाराष्ट्र के एंड तक आए थे, गुजरात के महाराष्ट्र के जो बॉर्डर है वहाँ तक आए थे, तापी नदी वहीं पे है, तापी में स्नान करके फिर राइट मोड़ गए कर्नाटक आंध्र प्रदेश के साइड में, फिर वापस आए वहीं से। तो इसलिए वापस जाने में वो रास्ता पड़ता है बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट जो हम्पी है, किष्किंधा आगरा तो वही पड़ता है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हैदराबाद साइड में वही पड़ता है। तो वहाँ ऋष्यमुखी गिरी में गए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के यात्रा और भगवान श्री रामचंद्र के यात्रा ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, भगवान इधर से दक्षिण की ओर जा रहे थे और दक्षिण से इधर की ओर आ रहे हैं। भगवान रामचंद्र जब गए अब दंडकारण्य में होते हुए नासिक, नासिक से तो पत्नी की चोरी हो गया, और ढूंढते ढूंढते दंडकारण्य होते हुए किष्किंधा पहुँचे, मतलब वही हम ऋषिमुख पर्वत में उनको मिले थे, उनके दोस्ती हुआ सुग्रीव और हनुमान से मिले, सुग्रीव आदि से दोस्ती हुआ बालीभद्र से, वही वर्णन वहीं आता है, तो अभी भी आएगा सप्तताल उद्धार वो घटना सब है रामायण के वर्णन ऋषिमुख पर्वत में। वहीं मिलने के बाद बारिश का सीजन शुरू हो गया था, तो भगवान राम ने वहाँ बारिश के सीजन बिताए, बोले नहीं बारिश में चतुर्मास होता है जाना नहीं होता, तो माल्यवंत गिरी है वहीं पर भगवान ने चतुर्मास किए। उसके बाद में फिर वहीं से अन्वेषण के लिए वानर सेना भेजा गया, चार दिशा में वानर सेना गए, वो अलग दिशा में। तो फिर धीरे धीरे जब पता चला तो दक्षिण की ओर चले भगवान राम ने। तो लेकिन महाप्रभु उधर से आ रहे हैं, दक्षिण से आते आते आकर के पहुँचे ऋषिमुख में, एंड में वापस आते समय। ये ऋषिमुख पर्वत जो वर्णन किया गया है उसका किंवदंती इस प्रकार है कि जो पर्वतमाला माल्यवंत पर्वतमाला और हम्पी के जो पर्वतमाला हैं उसमें कहते हैं कि वानर राज बाली वही उनका राज्य था। वो पहाड़ के ऊपर अभी भी महल है, बोलते हैं बाली का राजमहल था, वहाँ वानर राज बाली रहते थे, हजारों लाखों वानर सेना उनके साथ रहता था, उनका पूरा राज्य था। वो बड़े सुंदर जगह है, तुंग भद्रा नदी के किनारे, दो नदी एक तुंगा एक भद्रा दो मिलते हुआ, और लेकिन पेड़ पौधा नहीं है, खाली पत्थर है, लेकिन बड़े अच्छे दिखते हैं। वहीं पे पंपा सरोवर है, ऋषिमुख पर्वत तो बाली पर्वत के नीचे पंपा सरोवर है, जहाँ सोबरी ऋषि का सोबरी मुनि जो सबरी था, मातंग ऋषि का आश्रम है, सबरी के साथ भगवान राम ने जो मिले थे, जो बेर खाए थे, वही स्थान है। ऋषिमुख पर्वत से बिल्कुल नीचे उतर के 2-3 किलोमीटर है पास में सबरी का स्थान। तो कहते हैं कि यहाँ जो ऋषि रहते थे ये पर्वत पर, और बाली अगर थोड़ी दूर में रहते थे, किष्किंधा था, तो किष्किंधा राज्य था बाली का, सुग्रीव का, द्रोण भाई का। तो एक बार बाली जो था ब्रह्मा जी के पुत्र था और बहुत बलवान था। वो तो डेली मॉर्निंग वॉक में जाता था, स्नान करके वो पूरे ग्लोब को घुमाता था, हाँ 7 समुद्र में स्नान करके आता था संध्या करके। एक बार ऐसे वर्णन आता कि स्नान करता था, रावण आकर डिस्टर्ब किया, रावण पकड़ के ले आया घर में आकर रखा, तो ब्रह्मा जी अगर प्रार्थना की तो छोड़ दिया ऐसे। तो वो बाली ने अपने बल पर बड़ा घमंड था, लेकिन और एक महाअसुर था राक्षस, जिसका नाम था दुंदुभी राक्षस, वो भी जगत जीता होना चाहता था। तो उनको बोले इधर उधर क्यों घूमता, जाओ बाली से अगर जीत लो तो आप जगत जीता हो जाएंगे। तो उन्होंने भी वरदान प्राप्त किया था बहुत सारे, वो आकर के किष्किंधा में आकर बाली को ललकारा, खूब ललकारा। तो तभी बाली सुग्रीव दोनों भाई थे, बाली राजा था और ये छोटे कुमार थे सुग्रीव जी, दोनों में अच्छा संबंध था, बड़े स्नेह संबंध था बाली और सुग्रीव, दोनों एक साथ में रहते थे। तो जब वो दोनों महाबली थे और देखने में भी बिल्कुल समान थे दोनों भाई, जब दुंदुभी आकर के उनके घर के सामने खूब चिल्लाया, और रात के समय आ पहुँच गया था, ढूंढते एड्रेस लेट हुआ होगा, तो आकर के गाली दिया, बोला तुरंत लड़ूंगा मैंने। तो बाली जाकर देखा कौन आऊँ किसे ललकार रहा है, तो देखा तो उसका गुस्सा आ रहा था, लेकिन सुग्रीव जी को समझाए भैया आज अभी शाम हो गया, उनको बोलो जो आप बकबक करता है गेट बंद कर दो, सो जाओ कल सुबह देखेंगे। बाली बोला नहीं वो हो नहीं सकता, वो अभी मुझे ललकार रहा है, मैं तब तक मैं कापुरुष थोड़ी हूँ, मैं अभी देखता हूँ उसको कैसे आ रहा है। तब उन्होंने दौड़ा उनका पीछे अकेला, तो बोला कि अंधार रात में ये तो असुर है, वो कहाँ भाग जाएगा। तो भाई साहब अकेले जा रहे हैं, तो सुग्रीव जी उनके पीछे पीछे चले बाली का पीछे पीछे। तो बाली उनका पीछा किया दौड़ा, और देखा कि जब बाली आ रहा है गर्जना करके, तो दुंदुभी भी डर गया, पहले तो जाकर उनके दरवाजा पीट रहा था, लाओ मैं लड़ूंगा करके, जब जो आया तब तो भागा उन्होंने, भागा तो वो तो युद्ध कामी जो होते हैं तो ऐसे ही होते हैं बड़े, तो उनका पीछे दौड़ा उन्होंने अंधकार, तो दौड़ रहा था उसके पीछे पीछे उनका भाई सुग्रीव भी दौड़ रहा था, पता नहीं कहाँ ले जाएगा क्या करेगा। पूरा रात दौड़ा उन्होंने, पूरा रात रनिंग करते करते सुबह सुबह जाकर कहीं उनका गुफा था, गुफा में घुस गया, बड़ा गुफा था और गुफा में घुस गया, अंधकार तो इसी था, अंधकार गुफा में घुस गया, वाली जाकर रुक गया, बोले भाई कहाँ घुस गया, उसके अंदर कोई लाइट नहीं था, टॉर्च नहीं था, कैसे जाए। तो सुग्रीव भी पहुँचा, दोनों खड़े हो जाकर बोले चलो वापस चलो कहीं चला गया ना, नहीं मैं इतना दूर मुझे थका कर आया, मैं छोड़ कर नहीं जाऊँगा, बदला लेके जाऊँगा उसको, मुझे इतना ललकार रहा था, मैं वीर हूँ ऐसे नहीं हूँ, मरूंगा नहीं तो मरूंगा, मेरा कैसे ना, मैं तो जा रहा हूँ, आप ऐसा करो आपको डर लगता है खड़े रहो, मैं जब तक तो वापस नहीं आता हूँ मार करके तुम वहीं गुफा द्वार पर बेल के द्वार पर खड़े रहो। तो उनके ही खड़ा करके मैं तुम खड़े रहो मैं आता हूँ, वो प्रवेश कर गया, वो गर्त के अंदर प्रवेश कर गया, वाली ने प्रवेश कर गया, वो खड़ा है, पूरा दिन बीत गया और शाम के समय में भयानक शब्द आया उस बिल से, बड़े भयानक शब्द आ रहा था और उस शब्द कई दिन तक चला, वो कम से कम एक आध महीना तक वो खड़ा था सुग्रीव वो गर्त के सामने, और भयानक शब्द होता था, देखते देखते शब्द धीरे धीरे बंद होने से पहले रक्त निकला, वो गुफा के द्वार से भद भद करके रक्त निकला और उसके बाद शांत हो गया, साउंड बंद हो गया। तो इससे सुग्रीव निश्चित कर लिए कि भाई साहब मर गए, इतने ब्लीडिंग हो रहा है और वो असुर अपना घर में पता नहीं कुछ किया होगा, कैसे मार डाला, इतने रक्त निकले, शांत हो गए, मर गए। तो उन्होंने बोला कि पता नहीं असुर भाई को मारा, मुझे भी आकर के बदलने का कुछ करेगा, तो आने से पहले तो बहुत बड़े पर्वत खंड ला करके इस गुफा द्वार में रख दिया, बंद कर दे, बाहर से अंदर से धक्का नहीं खोल नहीं पाएगा, बंद करके और चल गया। और सोचा कि भाई तो मर गया, घर में वापस गया बड़े दुखी हो करके, मैं आया था भाई को हेल्प करने के लिए, माना नहीं और मैं अकेला वापस जा रहा हूँ, भाई तो गए, जा करके घर में पहुँचा, उनके मुख बिल्कुल सूख गया था, और देख करके सब मंत्री पात्र मंत्री बोले क्या बात, समझ गए इसी से। तो घर में बड़े सुख सभा हुआ, सब दुख किए, फिर बोले अराजकता कैसा होगा, तो आप ही राजा बन जाओ, वो नहीं चाहता था, लेकिन ज़बरदस्ती जो मंत्री परिषद सब थे बोले नहीं नहीं आप तो छोटे कुमार हैं, आपका क्या कमी है, तो उनको राज्याभिषेक कर दिए, राजा बना दिए और राजा बनकर रहा। और जो उनके बड़े भाई की पत्नी थी वो भी बोले आप भी हमारा साथ रहो, ऐसे करके वो राजा बनकर बैठा था और सम्मानते थे, छोटे राजा था ही राजा भाई था। तो वहाँ पे घटना क्या हुआ था कि बाली नहीं मरा था, बाली उनको मार डाला था, दुंदुभी को मारा था, महीना दिन लड़ लड़ करके अंततः तो उसको वध किया था और उसी का रक्त निकला था। बाली भी इंजर्ड था, वो भी दोनों इंजर्ड हुए थे, लेकिन उनके घर में घुस करके उनको मारा और उनके घर परिवार को और कोई लोगों को मारा, मार करके पूरा रक्त था। तो आ करके उन्होंने देखा कि वापस बाहर आकर देखा तो दरवाज़ा बंद है। तो अब चिल्ला सुग्रीव को बुलाया और सुग्रीव तो थे नहीं, सुने नहीं, बहुत आवाज़ देने के बाद तो बोला कहाँ चला गया, सुन नहीं रहा, रास्ता कौन बंद कर दिया, गेट कौन बंद किया। तो बड़े मुश्किल से धक्का देते देते थे, कई दिन लगा उसको, पत्थर को साइड किया और बाहर आया, बाहर आकर देखा कि कितना चिल्लाया है ही नहीं सुग्रीव, पता नहीं कहाँ चला गया। तो फिर वापस घर आया, घर आकर देखा तो दिन के समय वो तो महाराजा सुग्रीव बैठे हुए हैं, अब उनके पत्नी उनके पत्नी सब बैठे हुए हैं और सब मंत्री, तो उसको देख करके सुग्रीव भी डर गया, बोला नहीं अरे तो मरा नहीं वापस आ रहा है। अब वो उनको देखा उनके राज आसन पर बैठा है, अब उनका गुस्सा चढ़ गया और वो स्वाभाविक होना चाहिए। अब सुग्रीव उतर के जाकर माफी मांगा, बोला भैया माफ कर दो, मुझे पता नहीं था, मैं तो सोचा आप मर गए, पर मैं मर गया नहीं, तू पत्थर बंद करके आया बदमाश, तू मुझे मार करके मुझे चाहता था कि मैं ना आऊं मर जाऊं, तू राजा बन गया, तेरे मन में यही चक्रांत था ना, तू राजा बनेगा, मेरे पत्नी को ले जाएगा, मुझे मर जाऊं कि किसी इसी वजह से पत्थर ढक कर आ गया था, नेचुरल कोई भी सोचेगा। ऐसे सोच करके बोला नहीं नहीं मैं तो ऐसे सोचा, सुबह भी अपना सफाई दे रहे थे, बाली माना नहीं, थप्पड़ मारा उनको, किक मारे घड़ा दे, गेट आउट। वो कितने भी मारा लेकिन वो माना ने सभी समझा नहीं माना, उसको बद करने के लिए दौड़ा, इतने मारा उसको तो भागा प्राण विकल में, दौड़ करके कहाँ जाए अब, दौड़ दौड़ के भाग के आया, वो तो भागते फिरा किधर जाएगा। तो कहते हैं कि एक बार बाली ने, एक बहुत बड़े महिषा असुर था, वो असुर को मार करके उनका साथ लड़ते लड़ते आया था ऋषिम के प्रति, वो मार करके उसको बद करके उसको उठा करके घुमाया, इतने घुमाया कि उससे ब्लड निकल करके सारे आसपास में कई किलोमीटर तक ब्लड स्प्रे होने लगा, सारा तरफ ब्लड ही ब्लड हो गया, और उठाकर उसको फेंक दिया, वो डेड बॉडी जा करके असुर का दूर में पड़ा। तो मातंग ऋषि सुबह उठ करके देखे उनके बगीचा, जिसको उन्होंने कितने तुलसी का पेड़ है, फूल का पेड़ है, सुबह 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 पानी देते हैं, सिंचाई करते हैं, सारे देखते हैं ब्लड ही ब्लड है, ली क्या हो गया, कौन उत्पात किया, सारा पवित्र कर दिया मेरे बगीचा को, मेरे कुटिया को सब। तो उन्हें ध्यान नेत्र में देखे कि बदमाशी बाली ने किया है, बोले इतने गंद है ये हमारे बगीचा को आसपास ऐसे कर रहा है। तो उन्होंने साफ दे दिए थे कि अगर फिर कभी तू इसी एरिया में आया कि कुछ को किया तेरा छाती फट जाएगा, तो मर जाएगा। तो ये बात को बाली को पता चला, वो जाकर माफ़ी मांगा, लेकिन वो बोले ना मैं तो बोल दिया तो बदमाश क्या नहीं हो सकता। तो बाली ने ऐसे बाली ने डिसाइड किया कि भरी इस एरिया में नहीं जाऊँगा, वो जो बाउंड्री वाला था मालूम विश्वमुख प्रभु का जो एरिया था उनका ये था, वहाँ नहीं जाएगा, उस बाउंड्री क्रॉस नहीं करेगा। तो सुग्रीव को पता था, सुग्रीव जा करके वही मातंग ऋषि आश्रम पीछे विश्वमुख पर्वत में आश्रय लिया, और बाहर नहीं जा सकता। बाली उनको हमेशा चक्कर लगा, तो बाहर आने से मार डालूंगा तुझे, इतने गुस्सा था। बंदर लोग बिना कारण में गुस्सा होते हैं, आप लोग बंदर नहीं वृंदावन में देखो जाकर, बेमतलब के इतने लड़ते हैं रक्ताक्त तो हो जाते हैं। तो बानर थे ही, स्वभाव था उनके गुस्सा। तो इसलिए बाली विश्वमुख पर्वत में छिप के रहते थे और कहीं नहीं जाते थे, उनका साथ कुछ उनके चार पाँच मंत्री थे, हनुमान भी उनका साथ रहते थे, तो उनको भेजते थे जाकर के टिफिन विफिन लेकर आते थे खाने पीने के लिए, तो खाते थे वही और वहीं रहते थे बाली के भय से, डर के मारे वहीं रहते थे। वो बाली बन राजा बन के बैठे। तो ये ऋषिमुख पर्वत है जहाँ, और जब कबंध को मार करके भगवान राम जाते थे सीता अन्वेषण में, तो उन्होंने उनको बताया था कि आपका काम सफल होगा, आप जा करके किष्किंधा जाइए और सुग्रीव से मित्रता कीजिए तो आपका काम बनेगा, उन्होंने भविष्यवाणी किया था। तो भगवान ने इसलिए किष्किंधा आकर ढूंढ रहे थे, तो वन में जब घूम रहे थे तो ऊपर बैठा था पहाड़ के ऊपर सुग्रीव, हमेशा डरता था, पता नहीं भाई साहब ने कोई असुर भेजे होंगे, कोई पुलिस भेजे होंगे, कैसे पकड़े क्या करें। और जब नज़र पड़ा दोनों कुमार राम और लक्ष्मण, और डर करके सोचा कि पता नहीं कोई आया हमको सर पकड़ेगा क्या कर, खूब डर गया था। हनुमान को भेजा, आप बोले छुप करके जाओ। हनुमान ने अपना ड्रेस चेंज करके ब्राह्मण बन करके गए थे, एक ब्राह्मण बन करके जाकर पहली बार भगवान से मिले, मिल करके, लेकिन मिल करके निष्कपट बोल दिए खोल करके, मैं इसे डुप्लीकेट ड्रेस बनाकर आया हूँ, मुझे भेजे हैं लेकिन मैं आपको देख करके अब क्या डुप्लीकेट रखूँ बता देता हूँ सब, मुझे इसलिए सर बता खोल खोल बोल दिए, मुझे इसे दूत बनाकर भेजा था, और डर रहे थे हमारे राजा सुग्रीव जी इसे घटना है, वो आपसे मिलने के लिए भेजे, आपसे पता लेने के लिए क्या है, क्यों आए, क्या कर रहे हैं। तो भगवान राम जब निष्कपट डुप्लीकेट ड्रेस पहना था, वेश पहना था, वो जानना चाह रहा था मति गति, लेकिन आ करके भगवान को देख करके सारे बोल दिया, तो भगवान इतने प्रसन्न हो गए और सुग्रीव का नाम सुने तो उनको आशीर्वाद दे करके बोले जाओ हम उनसे मित्रता करेंगे लक्ष्मण सब। तो फिर राम और लक्ष्मण आकर सुग्रीव से मित्रता किए, वो ऋषिमुख पर्वत प्रसिद्ध है जहाँ पर भगवान राम का जो मेन प्रोजेक्ट था रावण मध्य सीता अन्वेषण का, जहाँ पर उनकी मित्रता हुआ, एग्रीमेंट साइन हुआ दोनों का, दोनों सुग्रीव और भगवान राम का, वही ऋषिमुख पर्वत था, इसी पर्वत पर हुआ, इसी पर्वत पर सीता जी के कुल अलंकार प्राप्त किए थे, सुग्रीव ने वो भगवान राम को दिखाए, ये सारे रामायण का ऋषिम पर्वत का वर्णन आता है। उसके बाद में वही सुग्रीव ने जब मित्रता हुआ तो सुग्रीव ने बताया कि प्रभु बस मैं तो वही बाहर निकल सकता हूँ, मेरा दुख क्या, रो रो कर खूब बताया, बोला मैं तो जी जान लेकर आपके तरफ हूँ लेकिन मेरा तो कुछ काम करो। तो भगवान राम बोले मित्र मित्र होते हैं, मित्र के लिए कुछ भी करने के लिए मैं तैयार हूँ, आप बताओ दिक्कत क्या है। ना बता दिक्कत क्या भाई साहब, छक्के रखते मार देंगे मुझे, ना तुम्हारा सुख किस में है, मेरे सुख भाई को मर्डर करने में है, सीधा बता दूंगा। तो भगवान बोले कोई बात नहीं मार दूंगा मैं। बोला नहीं बातों से काम नहीं चलता, मैं जानता हूँ वो ऐसे साधारण बलवान पुरुष नहीं, उनका बल के आकलन मुझे है। तो उनका बल का वर्णन किया, ऐसे बड़ा बड़ा बात किया, तो इसलिए उनको नहीं आता था कि विश्वास नहीं होता था कि भगवान राम वाली को वध कर सकते हैं, विश्वास नहीं करते थे। भगवान राम बोले कुबले बोले हाँ लगता तो बड़ी बात करते हैं लेकिन मुझे कैसे विश्वास कर सकता हूँ, मैंने अब वाली को मार सकते हैं, हम क्या नहीं मिले, मैं जानता हूँ वाली को, मैं उसके टेस्ट किया हूँ उसके मार, मुझे पता है कितने टन की उनका मुक्का होता है और कितनी बड़ी शक्ति उसका होता है। तो फिर भगवान ने बोले अच्छा क्या प्रमाण चाहते तो विश्वास करेगा कि मैं बली को मार सकता हूँ ना, हाँ अगर आप चाहते हैं तो फिर मैं विश्वास कर सकता हूँ, वो जो असुर को मारा था उन्होंने, वो असुर इतनी बड़ा था, इतने विशाल काय था, पर्वत जैसा शरीर था, वो तो जिंदा था उसको उठा उठा करके फेंक दिया उन्होंने, उसका डेड बॉडी पड़ा हुआ है, मान से लगभग कंकाल पड़ा हुआ है लेकिन इतने विशाल पर्वत के जैसा पड़ा हुआ है, अगर उसी को आपने उठा करके उठा सकते हैं फेंक सकते हैं तब मैं मानूंगा कि हाँ आपकी ताकत है, क्योंकि वो उसको उठाता कोई नहीं उठा सकते, उठा के घुमा कर फेंक दिया था, आप अगर उठा सकते हैं तो भगवान बोले कोई बात नहीं, कहाँ पड़ा ना वो देखो नदी के दूर 2-4 किलोमीटर आगे, मगर हम बात करते कि उनके साथ गए जाके केवल पैर नहीं पैर के अंगुली के अग्रभाग स्पर्श मात्र किए ऐसे ही खेल खेल में, और कई कोस उड़ते उड़ते चला गया, और ये वो तो इतनी बोला बाप फेंके भी नहीं ऐसे उड़ा दिए, तो विश्वास हुआ लेकिन फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था, बोला हाँ तो लगता तो है आप महाबली हैं तो, लेकिन लेकिन क्या ना फिर भी मैं उसका जानता हूँ उनका पराक्रम, फिर बोले फिर क्या ना, बोला ये कहीं लिखा है साल वृक्ष कहीं लिखा है ताल वृक्ष, इसी में ताल वृक्ष आता है चैतन्य चरितमृत, लेकिन रामायण में साल वृक्ष बनना है, जो भी हो साल हो ताल हो विशाल वृक्ष था सात, बोला बलि ने खेल खेल में इन सातों को यहाँ एक यहाँ एक इसे अलग अलग था, सातों के एक बाण में बिंद डालता था छेद कर डालता, तो अगर ऐसा कोई वीर हो एक बाण में सात में स्पट लगा दे टच कर दे तब फिर मानूंगा। तो भगवान ने सप्तताल विद्ध किए थे और वर्णन आएगा चैतन्य चरितमृत चैतन्य महापुरुष, तो भगवान राम तो उनको छेद कर डालते एक बाण में सातों को, और चैतन्य महापुरुष जाएंगे बोले भगवान राम इसी को बाण मारे थे, जाकर आलिंगन करके वो पेड़ ही उठ जाकर सुबह कुंड चला गए सारे सशरीर में पेड़ चला गया, पेड़ ही खत्म, केवल स्पॉट है यही था पेड़, भगवान ने उसको सीधा वैकुंठ भेज दिया चैतन्य महाप्रभु, वो तो केवल बाण मार के छेद किए थे, वो तो सीधा उनको उड़ा दिए वैकुंठ भेज दिए महाप्रभु, वर्णन आएगा अभी थोड़ा आगे से शायद, वैकुंठ नहीं गए भगवान राम मारे वैकुंठ नहीं गए, चैतन्य महाप्रभु स्पर्श करके बाण फड़ नहीं सीधा आलिंगन के वैकुंठ भेज दिए। तो इस प्रकार जो दो काम उन्होंने किए भगवान राम ने सप्त साल विद्ध किए और उस उसका डेड बॉडी को स्केलेटन को जो हटा दिए तब बाली का विश्वास हो गया कि आप मार सकते हैं। तो इसी प्रकार ये सब लीलाएँ ऋषिमुख पर्वत में हुआ था और वहीं पे सुग्रीव जी के रेसिडेंस था, भगवान राम भी वहीं रहते थे उनके साथ में, बाली बद्ध के लिए ही षडयंत्र करके निकले थे। अब उन्होंने भगवान राम को तो प्रणाम कर रहा था उनको सम्मान करता था लेकिन लक्ष्मण को नहीं बोल रहा था कुछ सम्मान नहीं किया था कुछ नहीं किया था। सुग्रीव ने लक्ष्मण के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया था, राम को मानता था, मान करके उनके पराक्रम देखा सब कुछ कर रहा था, लक्ष्मण साथ में थे नहीं करता था। तो कई आचार्य कहते हैं कि जब पहली बार बाली के साथ भगवान ने बोले कि जाओ लड़ो हम खड़े रहेंगे मार देंगे, वो तो विश्वास हो गया था, पहले मना करा था, बोला मैं हूँ ना तेरे साथ में, मैं बाण लेकर खड़ा हूँ, राइफल लेकर सीधा को भी मारूंगा, आप केवल मैं देखा नहीं सामने आ जाए देखना। तो तभी सुग्रीव का भरोसा हुआ, वाली को जाकर ललकारा, वाली आया खूब लड़ा, जब इतने मारा वाली उसको मरते दम तक आ गया, वो चिल्लाता है देखता है और क्यों मारते क्यों नहीं, पास में तो है कहाँ चले गए, भगवान राम मार नहीं रहे थे। तो देखा कि पता नहीं मैं मर जाऊंगा, वो मारेंगे कि नहीं, भाग करके आया, भाग कर आया, पहली बार इसी प्रकार मूर्ख होकर आया, मर मर करके आकर के बोला आपको जब मित्रता आए थे धोखा मुझे देना था, मुझे पहले बता देते, मैं इतने विश्वास के मुझे धोखा क्यों दिया, इतने एग्रीमेंट साइन किए, इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, अब क्षेत्रीय है राजपुरुष है, मेरे साथ ऐसे क्यों किया, मैं तो डर के मारे चुपचाप बैठा था मेरे भाग्य में लेकर, मुझे भेज दिए नहीं नहीं मैं मार डालूंगा, अरे मारे ही नहीं, मैं मर ही जाता था आज तो, आज मैं दौड़कर भागकर नहीं आता तो आज ही मेरा काम बन जाता, आप ऐसा क्यों किए। तो भगवान राम बोले नहीं मुझे मारना तो था, लेकिन अब दोनों में इतने सामंजस्य था, दोनों देखने में इतने एक जैसे हैं, तो मैं कैसे अगर बाण मारता बाई चांस उसमें न जाकर आप में चला जाता, है ऐसा क्या ना और क्या, आप दोनों ड्रेस एक ही पहने हैं, रंग एक ही है, वर्ण एक ही है, साइज सब सब कुछ एक ही है, तो इसलिए मुझे फंस गया, मैं किसको समझू कौन वाली है कौन सुग्रीव है। तो फिर कैसे पहचाना, बोला दोबारा ना दोबारा बाप रहा हम नहीं जाऊँगा मर गया अभी तो, इतने दिन उसको ठीक करना पड़ गया, इतनी मार मारा उन्होंने, बोला नहीं ठीक हो जाएगा जाओ ना, क्या भरोसा है। तो भगवान ने लक्ष्मण को बोले एक वनपुष्पी माला लाकर उनको पहनाओ, तो बिना गुरु कृपा से भगवान की कृपा नहीं होता, तो लक्ष्मण आचार्य हैं तो इसलिए उनको बोले, लक्ष्मण ने फिर उनको माला पहनाए, तब इस बार उनको बालीबद्ध किए थे। तो ये सारे भगवान राम की लीला इस ऋषिमुख पर्वत में किष्किंधा पर्वत में हुआ था, वही ऋषिमुख पर्वत के पास में दूसरे पर्वत है जिसका नाम है माल्यवंत पर्वत, जहाँ भगवान ने 4 महीना व्रत धारण किए थे बारिश के समय में, वो पर्वत आज भी है जहाँ भगवान राम रुकते थे, गुफा है बिल्कुल, बोलते हैं कि अनंत शेष सांप के जैसा है, अनंत शेष सुरंग होंगे, अनंत से अब गुफा बना कर नेचुरल रखे थे भगवान ने वहीं रहते करके, इस प्रकार सब आज भी इस गुफाओं का स्थान का दिव्यता है, दर्शन होता है, अनेक तीर्थयात्री जाते हैं किष्किंधा हम्पी बाली की राजकिला विश्वमुख पर्वत पंपा सरोवर माल्यवंत गिरी और तुंग और भद्रा इस नदी को दर्शन करते हैं, बड़े सुंदर जल है तुंग भद्रा। तो ये सब एरिया भगवान चैतन्य महाप्रभु गए, वो विश्वमुख पर्वत देखे, अब ये ताल धरा ये सब करके अब इसी के पास में धनुर्तीर्थ का स्नान करके फिर ये ऋषिमुख पर्वत अगरा गए। तो इस प्रकार भगवान जहाँ जहाँ विशेष विशेष स्थान है, कहीं देव मंदिर है, कहीं तीर्थ है, कहीं प्रकट स्थान है, तो श्रीमन महाप्रभु वही रास्ता देकर जाते हैं और उसको दर्शन भी करते हैं और यहाँ अनेक प्रकार से लोगों को उद्धार भी करते हैं। वहाँ तो लोग नहीं थे, वो पेड़ पौधा को उद्धार कर डाले, 7 पेड़ को वैकुंठ भेज दिए। इस प्रकार महाप्रभु साक्षात भगवान है, तो उनके बिल्कुल स्वतंत्र इच्छा, उनको कोई बोल नहीं सकता भाई इधर क्यों नहीं आए इधर क्यों आए, उनके मर्जी, स्वतंत्र भगवान है, वो अपने स्वतंत्र इच्छा से दक्षिण भारत भ्रमण कर रहे थे उद्धार करने के लिए, और जहाँ जहाँ घूम करके जहाँ जहाँ जाते हैं जा करके इसी स्थान को और पवित्र कर डालते हैं। पहले तो भगवान राम गए थे, भगवत चरण वहाँ पड़ा था, महीना दिन भगवान राम रुके थे, इतने सारे लीला किए थे, वो तो स्थान दिव्य हो ही गया था, उसके ऊपर में इस कलयुग प्रारंभ में श्री चैतन्य महाप्रभु जा करके इस स्थान को और भी दिव्य किया है। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर हमारे आचार्य परम्परा में कहते हैं कि हम लोग कोई अगर पिकनिक में टूर में कोई दर्शन स्थान में जाएं तो हम उसी स्थान में जाना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जहाँ कृष्ण गए राम गए वो हमारा मतलब कि नहीं, गौर आमार जे सब स्थान करिला भ्रमण रंगे से सब स्थान हरिब आमी प्रणय भक्ति संगे, बोले पिकनिक तो इसी जगह में होना चाहे जहाँ गौरांग महाप्रभु गए हैं, है ना नहीं। हाँ तो हम लोग कैसे हो नहीं पाते हैं, जागोराम प्रभु नहीं गए, हम वही जगह पर जाते हैं अधिकांश समय में, लेकिन जाना तो वहाँ चाहिए। जहाँ गौर भगवान गए थे वो तो साउथ इंडिया दो ढाई साल टूर किए, हम साउथ इंडिया जाते नहीं, दूर पड़ता है। और जाते भी तो महाप्रभु जहाँ जहाँ गए थे वही जगह जाना चाहिए। वो जगह जाने से वो स्मरण आता है भगवान की लीला क्या क्या इस स्थान में किए थे। अभी अगर कभी अब हम्पी जाएंगे किष्किंधा तो आपको स्मरण आएगा भगवान राम की लीला, भगवान चैतन्य महाप्रभु का डबल डबल रोल हुआ है इधर, इस स्थान के कितने महत्व है। ऐसे ही पेड़ पौधा है नहीं, और जो पांच सात पेड़ थे उसकी भगवान वैकुंठ भेज दिए, बताओ ऐसे ही केवल पत्थर रख दिए, लेकिन फिर भी इतने दिव्य है, इतने सुंदर स्थान है, जाने से मन भर जाता है। हाँ वो जो तुंगा और भद्रा नदी निकलता पहाड़ से वो पर्वत अंचल से, और बड़े सुंदर पवित्र स्थान है। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ऋष्यमुख गिरी, माल्यवंत गिरी और ये तुंगभद्रा नदी आदि स्नान करके घूमे थे। अगर आज भी कोई इस स्थान को जाते हैं तो इस स्थान का, क्योंकि पहले तो भगवान राम आए थे, राम के बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु आए थे, इसलिए उनका डबल पोटेंसी है। तो प्राय लोग जाते हैं वहाँ दर्शन में, हम्पी क्षेत्र दर्शन करने के लिए, वही एक किष्किंधा क्षेत्र, वही ऋष्यमुख पर्वत, वही सब है पंपा सरोवर आदि। तो इस प्रकार हम लोग का यद्यपि यही लक्ष्य होना चाहिए कि महाप्रभु के चरण चिन्ह के अनुसार जहाँ जहाँ उन्हें भ्रमण किए थे, तीर्थ किए थे, हम लोग वहीं जाएँ। तो कम से कम लाइव प्रोजेक्ट रखिए, कभी ना कभी जाएंगे, कभी ना कभी प्रेमी भक्तों के साथ में वहाँ जाएँ, वहाँ दर्शन किए जहाँ जहाँ भगवान ने घूमे। तो इस प्रकार महाप्रभु के दक्षिण भारत भ्रमण है, फिर हम पीछे किष्किंधा से चल करके आगे हो जाएंगे दंडकारण्य। दंडकारण्य में आ गए, दंडकारण्य यही आ गया ना, सप्तताल वृक्ष देखे कानन भीतर, अति वृद्धि अति स्थूल अति उच्चतर। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने दंडकारण्य के जंगल के भीतर सप्तताल नामक स्थान देखा। यहाँ एक ताड़ के सात वृक्ष अत्यंत पुराने मोटे तथा उच्चे थे। सप्तताल देखी प्रभु आलिंगन कैल, स शरीर सप्तताल वैकुंठे चलिल। अब सारे सात पेड़ को देख करके भगवान राम ने बाण मारे, जाके आलिंगन कर डाले, अरे उठ करके चले गए सारे पेड़, वैकुंठ चले गए स शरीर में। शून्य स्थल देखी लोके रह हैल चमत्कार, लोके कहे ए सन्यासी राम अवतार। जितने लोग आए थे पीछे पीछे, क्योंकि महाप्रभु जब चलते थे उनके पीछे भी बहुत लोग चलते थे गांव वाले सब, क्योंकि महाप्रभु का शरीर तो एक 7.5 फीट लगभग ऊंचाई था बड़े, और लंबे लंबे हाथ था, चमचमाते सोने जैसे उनका शरीर के वर्ण था, और हमेशा रोते थे, हरिनाम करते चलते थे, इतने लंबे लंबे आँख आकरण, तो कोई भी देखता था वो भी उनके पीछे चलता था। अब जा करके उन्होंने एक वृक्ष को, विशाल विशाल वृक्ष था बड़े ऊँचे मोटे, और उसको आलिंगन करके शून्य कर दिए, उड़ के चले गए। तो बोले ये तो सख्यात राम होगा, बोले ही राम अवतार है, सारे लोग लोग ही माने। सशरीर ताल गैल श्री वैकुंठ धाम, ऐसे शक्ति कार है विनायक राम। बोले वो राम अवतार होगा, नहीं तो ये ऐसे शक्ति किसका हो सकता है विनायक राम। हाँ तो बोले प्रभु आसी कैल पंपा सरोवरे स्नान, पंचवटी आसी तहाँ करिल विश्राम। अब पंपा सरोवर छोटा सा पंड है, बड़े पद्म फूल भरी हुए, कमल के फूल भरा हुआ है उसमें, छोटा सा मातंग जी सामने। तो पंपा सरोवर में स्नान किए, फिर पंचवटी आ गए, पंचवटी तो बहुत दूर है यहाँ से नासिक में, आकर पंचवटी आकर विश्राम किए। नासिक के त्रिवंग देखी, त्रिवंग देखी केला ब्रह्मगिरी, कुशावर्त आइला जहाँ जन्मिला गोदावरी। ये कोई नासिक अगर जाएंगे टूर में, ये एक दो दिन का यात्रा है, ये जहाँ गोदावरी का उद्गम स्थल है कुशावर्त, ब्रह्मगिरी और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये सब स्थान है नासिक में, ये सब भगवान चैतन्य महाप्रभु दर्शन किए जाकर। वो भी बड़े पहाड़ के ऊपर चढ़ के जाना होता है। हाँ पहाड़ के चटके पर जाना होता है कुशावर ब्रह्मगिरी जहाँ पे गोदावरी उद्गम हुआ था, ये सब स्थान महाप्रभु दर्शन किए। इस प्रकार नाम तो दक्षिण भारत वर्णन है, लेकिन दक्षिण भारत नहीं, दक्षिण के बाद महाराष्ट्र वो पश्चिम भारत के आसपास आ जाता है, पश्चिम बॉर्डर है। और हाँ पश्चिम कम से कम साउथ इंडिया प्लस महाराष्ट्र, कर्नाटक तो साउथ इंडिया में आता ही है, और मध्य प्रदेश का भी कुछ हिस्सा, ये सारे भ्रमण करके महाप्रभु ने गए। उनका जो यात्रा के दौरान पर ये सब स्थान उन्होंने घूमे। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री चैतन्य चरितामृतम की। सबरी कथा रह गया।